Akshay, did you always knew what you wanted to do when you passed out from MBA?
I was all over the place. Saurabh, what about you?
Yaar, meko to tab bhi idea nahi tha, aaj bhi idea nahi hai.
Confused about your career choices? Wondering what steps to take next? In this podcast called Beyond Campus, Saurabh Garg, founder of C4E, and Akshay Dutt, founder of Unnati, are on a mission to crack open the career success code for the youth. Wo bachpan mein kehte the na, tum jo chahe ban sakte ho. So, let's turn the dream into reality.
My name is Pranay Prakash and I head the people operations for delivery.
Have you experienced the joy of having that fancy new phone you ordered delivered to you the very next day? Or the convenience of having those essential medicines coming to your doorstep? I cannot imagine a time before online shopping and same-day delivery became a part of my busy life. And this is made possible by companies like Delivery, a logistic tech startup which handles the delivery operations of all the major e-commerce companies in India. Today, Akshay Dutt is in conversation with Pranay Prakash, head of supply chain HR at Delivery, where he talks about his career, which spans across sectors like staffing, retail, mining, BPO, before joining Delivery in the HR function 5 years ago. Here's Pranay talking about his first HR job.
I come from a very small town called Patna in Bihar. Wahi paida hua, wahi pe badha. And then I moved to Delhi. Graduation maine Delhi mein aake ki. So I passed out from the South Campus. I'm a commerce graduate. Then I went to the Indian Military Academy. I got trained there. Unfortunately, I had to be boarded out. When I came back, to wo sari journey fit se wapas shuru karni padi. But jo kuch bhi wahan pe sikha, that was like very, very valuable. It's more like a life training than anything else. So uske baad main wapas aaya, I tried catching up with friends, matlab jo college ke the, thode school ke the. To us time pe kisi ne dost ne bola ki yaar ek office hai Green Park mein aur Adeco bol ke company hai and they help place people. So basically contract staffing karte hai wo log. So, मैं पहुंच गया उनके पास. एक दो रिक्रूटर्स थे उनके जिन्होंने इंटरव्यूज लिए. कोई तो बहुत सारी भीड़ लगी थी, आई थिंक किसी तो सेल्स प्रोसेस के लिए वो हायर कर रहे थे किसी क्लाइंट के लिए, मतलब वो जो सिम कार्ड वगैरह बेचते हैं और वो सब. तो वैसा कुछ था ना, लाइक हाँ ठीक है, मतलब जॉब ही तो है, पैसे मिलेंगे कर लूंगा, मतलब कोई बड़ा डील नहीं है. शायद उनको कम्युनिकेशन समझ में आई या कुछ तो भी हुआ, दे वेंट इनसाइड, कॉल्ड अ कपल ऑफ सीनियर्स, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया फिर. And I was like, यार पता नहीं कैसे इंटरव्यूज होने, क्योंकि बाकी सब जनता तो बाहर ही खड़ी है. So I went inside, I spoke to a couple of guys. You remember Mr. Raj Negi, who used to head Delhi NCR, Mr. Mahesh Bhatt, who used to head, I think, the entire North at that point in time. So इन लोगों से मुलाकात हुई एंड दे सेड कि यार तुम रिक्रूटमेंट करोगे? लाइक देखो मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, जो सिखाओगे वो कर लूंगा, मतलब मुझे तो जॉब चाहिए. So that is how it all started. So my first job started as a field recruiter, जहाँ पे मैं क्लाइंट्स के पास भी जाता था. I still remember BACS, जो पहले डेसू होता था, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो BACS में प्राइवेटाइज हुआ था जब रिलायंस ने टेक ओवर किया था. So that was the client which was assigned to me. तो फील्ड पे घूम घूम के मीटर रीडर्स ढूंढे हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग ढूंढे हैं, मेंटेनेंस वाले लोग ढूंढे हैं, ड्राइवर्स भी ढूंढे हैं. And then I think very shortly, the recruiters who hired me or who kind of, you know, processed my candidature to the seniors, they started reporting on to me. And this was like within a month, month and a half kind of. And then I was promoted, I was taken up as a group account manager. So I was account manager, karne lag gaya, client interactions honi shuru ho gayi. And that is where the journey basically started. Uske saath saath mujhe ek payroll wagara ki aur servicing ki bhi team mil gayi. जिनका कि अगेन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब काम होता कैसे है. सो उन लोगों से ही सीखा जो मुझे रिपोर्ट करते थे. एंड दैट इज हाउ वन थिंग व्हिच लाइफ टॉट मी ड्यूरिंग दैट फेज इज कि यार जो आपको रिपोर्ट करते हैं उनसे भी आप सीख सकते हो, तो उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट करो जितनी आप किसी भी सीनियर की करोगे, बिकॉज हर चीज तो शायद आपको नहीं आती होगी. सो दैट इज वेयर वी स्टार्टेड. उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी इन रिलायंस रिटेल. रिलायंस रिटेल वाज सेटिंग अप इन दिल्ली एनसीआर उस टाइम पे. नवनीत सलूजा जो हैं वो सीईओ हुआ करते थे और मिस्टर रोहित चंद्रा यूज्ड टू बी द हेड ऑफ एचआर फॉर दिल्ली एनसीआर इन हरियाणा. एंड आई मेट मिस्टर चंद्रा, मिस्टर रोहित चंद्रा, हु वाज द हेड ऑफ एचआर उनको लगा कि यार ये फौज वौज से बंदा वापस आया है तो मतलब सही बंदा होगा, काम वाम थोड़ा बहुत मुझे आता ही था, मतलब जो भी थोड़ा बहुत अड्डे को मैं सीखा था। एंड वन मोटिवेशन वॉज क्या, रिलायंस है, इतना बड़ा ब्रांड है, रिटेल एक इंडस्ट्री है जो अभी बस शुरू हुई है, ऑर्गेनाइज रिटेल दैट इज, सो इट्स लाइक रिलायंस का ब्रांड है, इंडस्ट्री रिटेल की शुरू हो रही है अभी, तो दैट इज हाउ द रिटेल जर्नी स्टार्टेड। बहुत सारी हायरिंग करी वहां पे भी, मतलब आई थिंक कुछ 1.5 साल में रिलायंस में मैंने 8-9 हज़ार लोग तो या 10 हज़ार लोग तो हायर कर लिए होंगे अक्रॉस दिल्ली एनसीआर और हरियाणा।
एंड ये कैसे आपने, क्या मतलब आपकी इन हाउस टीम थी या आप वेंडर्स के साथ कर रहे थे, मतलब इतने लार्ज नंबर कैसे आपने अचीव किया?
एक इन हाउस टीम के नाम पे जो स्टोर ऑपरेशंस के लिए जो करते थे, आई थिंक आप लोगों ने सबने रिलायंस फ्रेश के स्टोर्स देखे होंगे बहुत जगहों पे, सो दैट इज द स्टोर दैट वी स्टार्टेड हायरिंग फॉर इनिशियली। एक मेरी टीम लीडर हुआ करती थी कविता भाटिया, आई स्टिल रिस्पेक्ट हर अ लॉट बिकॉज शी टॉट मी अ लॉट ड्यूरिंग दोज डेज। तो उन्होंने देखा रिलायंस में एक पॉलिसी है, वो जॉब्स एडवर्टाइज नहीं करते पब्लिक में, मार्केट में, मीडिया में कभी, मतलब पोर्टल वोटल पे दिखता हुआ तो ठीक है, अदरवाइज तो नहीं होता, और ब्लू कॉलर वाले लोग तो वैसे भी आपको मिलते नहीं है। तो थोड़ा बहुत अडेको का एक्सपीरियंस था, काफी कुछ कविता मैम ने सिखाया, और मतलब फ्लोर पे घूम घूम के, स्टोर्स में घूम घूम के, कि अगर एक न्यू स्टोर ओपनिंग वाली एक टीम होती थी हमारी जो आके अनाउंस करती थी कि अगले 3 महीने में फलाना फलाना जगह पे दिल्ली में स्टोर्स खोलने वाले हैं, उन उन जगहों पे जाके फिर लोकल मार्केट में देखते थे कि भाई यहाँ पे बंदे कैसे मिल सकते हैं, मिनिमम वेज टाइप वाले लोग हायर करने होते थे बिकॉज कॉस्ट मार्जिन्स वैसे होते थे, नया बिजनेस था। मतलब जितने रिलायंस के स्टोर्स दिल्ली एनसीआर में खुले हैं मैं शायद हर स्टोर पे एक बार तो जरूर गया हूँगा जब तक मैं वहाँ पे था।
ओके, मतलब आप उस एरिया में थोड़ा वो वर्ड ऑफ माउथ फैला देते थे कि यहाँ स्टोर खुल रहा है,
वर्ड ऑफ माउथ फैलाता था। हमने काफी सारी गलतियां भी करी, मुझे याद है आई वुड नॉट नेम द कंपनी, बट एक जगह पे हमको अपना स्टोर शुरू करना था और उसके बाजू में ही मतलब को 40-50 मीटर दूर उसी लाइन में एक और कंपनी ने रिटेल शुरू किया था, और मतलब हमको लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि ओवरनाइट हमने ये पुल ऑफ कर लिया कि मतलब उनका सारा का सारा रिटेल्स का जो स्टाफ था वो आज रात को उनके पास काम कर रहा था और कल सुबह वो हमारे स्टोर में खड़ा था, और हमको लगा कि यार ये तो हमने कुछ बहुत सॉलिड पुल ऑफ कर लिया है, बट 4-5 महीने बाद रियलाइज हुआ कि यार इसमें से आधे लोग चले गए और वो भी एक साथ ही चले गए। सो दैट इज हाउ वी लर्न कि यार इतने बल्क में जब हायर करते हो तो इधर यू नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दैट, और या फिर इतने बल्क में एक साथ एक ही रेफरेंस लोग हायर नहीं करने चाहिए। So that was one learning that we got after having worked for a while there. So Reliance में काफी सारा काम किया, Reliance Fresh के अलावा और भी format setup किए, काफी कुछ सीखने को मिला, head HR जो थे रोहित चंद्रा उनके साथ काफी closely काम करने को मिला, and then I moved on to couple of more assignments. One was because रोहित चंद्रा was moving out from Reliance Retail and I was like यार अभी इनके भरोसे मैंने पंगे तो बहुत सारे ले लिया, अभी ये चले जाएंगे तो मुझे बचाएगा कौन? I was like what 24-25 years type. अगर रोहित चंद्रा जा रहे हैं तो मुझे भी चले जाना चाहिए। तो दैट इज हाउ आई मूव टू द नेक्स्ट असाइनमेंट। एक चीज बहुत नोटेबल थी आई थिंक उस पूरे रिलायंस के स्टेंट की, विच आई स्टिल शेयर विद पीपल एज एन एक्सपीरियंस एज अ लर्निंग, जो हमारे सीईओ थे मिस्टर नवनीत सलूजा, वो आए थे जब रोहित चंद्रा का और मेरा फेयरवेल था, और हमारा फेयरवेल दोनों का सेम डे पे ही था। तो मिस्टर नवनीत सलूजा वॉज देयर फॉर द फेयरवेल एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, सिंस स्पेशली सिंस पूरी एचआर टीम में बहुत यंग लोग थे, हम सब लोग ऐसे 24-25-26 साल के लोग थे। सो मिस्टर सलूजा का कहना था कि यार लर्निंग और अर्निंग दो चीजें होती हैं जो आप जिससे आप कॉम्पनसेट होते हो। जब करियर शुरू होता है तो अर्निंग कम होती है, लर्निंग बहुत इमेंस होती है आपकी, और जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ते चले जाते हो 12 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स, तो जो लर्निंग का क्वेश्चन होता है, जो क्वालिटी होती है, वो काफी चेंज हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, मतलब एज कम्पेयर टू द इनिशियल डेज ऑफ योर करियर। और क्योंकि बहुत सारा काम आप कर चुके होते हो, अपने डोमेन में काफी सारी एक्सपर्टीज ले चुके होते हो, तो आपके पास कुछ नया ज्यादा, मतलब रोज रोज की कुछ नई लर्निंग आ रही हो ऐसा नहीं होता है जनरली, बट उस पॉइंट पे जाके आपकी अर्निंग एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होती है, एंड विच आई सॉ ओवर द इयर्स ऑफ ओवर द इयर्स, हाँ यार ये हो तो ऐसा ही रहा है, एंड दैट इज वन एडवाइस दैट आई स्टिल स्टिक बाय। मैं अभी भी लोगों से बात करता हूँ, जब जूनियर बच्चों से बात करता हूँ, कैंपस पे लोगों से बात करता हूँ, तो मैं ये एक चीज उनको जरूर बोलता हूँ कि See, this is how you want to shape up your career and this is how you should shape up your career. कि शुरुआती दिनों में मेहनत कर लो जितनी करनी है, पैसे थोड़े कम भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं, बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और एक बार आप सीख गए उसके बाद तो लोग आपको लोग पैसे लेके आपके पीछे भागेंगे, एंड देन यू विल हैव अनदर प्रॉब्लम कि यार किसको ना बोलना है अभी। आई थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी डिड देयर राइट फ्रॉम सोर्सिंग को बिना एडवर्टीजमेंट के बिना एक भी रुपया खर्चा किए कैसे सोर्स करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कैंडिडेट्स की भीड़ कैसे बनानी है, शॉर्टलिस्ट सिलेक्ट कैसे करते हैं, इतने लोगों को ज्वाइन कराना है तो क्या रेशियोज होने चाहिए, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लू कलर वर्कफोर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। वो सब लर्निंग एक तरफ है, और नवनीत सलूजा का जो एक ही लर्निंग था वो दैट वाज एंड दैट हैपेंड ऑन द लास्ट डे दैट आई वाज विद रिलायंस। रिलायंस के बाद फिर दो छोटे छोटे स्टिंट्स हुए, देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एयर होस्टेस एकेडमी, दैट वाज मोर ऑफ अ डिस्ट्रेस असाइनमेंट बिकॉज अब मिस्टर चंद्रा जा रहे थे रिलायंस से तो वहां से तो निकलना था, तो और कुछ कहीं मिला नहीं तो मैंने सोचा यार यही चलो ठीक है, तो उनके लिए काफी सारी हायरिंग करी। दैट वाज अ वेरी ब्रीफ स्टिंट, द ऑर्गेनाइजेशन अनफॉर्चुनेटली शट डाउन, सो आई वाज देयर ओनली फॉर अबाउट 7-8 months। फ्रॉम देयर आई वेंट टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन। वन ऑफ माय सीनियर्स फ्रॉम AHA द एयर होस्टेस एकेडमी, ही हैड जॉइंड एट वीडियोकॉन, सो एंड ही हैड प्रॉब्ली ही हैड सीन मी वर्किंग, ही हैड लाइक द वे प्रॉब्ली आई वर्क्ड, आई एम होपिंग दैट, so he was the one who called me at VideoCon. So and that was the last time that I've ever given interview sort of. उसके बाद से it has only been a word of mouth कि हाँ ठीक है मैं इसको जानता हूँ या फलाना इसको जानता हूँ, उसने recommend किया and this is the guy, which is a good thing I'm particularly proud of right now also. So VideoCon में काफी अच्छा stint था, telecom setup कर रहे थे, थोड़ा बहुत mobile handset का business था, D2H का business था, थोड़ा बहुत वहाँ पे भी हेल्प एक्सटेंड किया टीम्स को और टेलीकॉम के ऊपर काफी सारा काम किया। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अराउंड द टाइम व्हेन द टेलीकॉम स्कैम ब्रोक आउट, कि जब लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में और वो सब में जो इश्यूज हुए थे, सो उसके बाद द बिजनेस डिड नॉट टेक अप मच एक्चुअली। फ्रॉम VideoCon आई मूव टू दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सारा इंटरनेशनल। नाउ दैट वाज आई थिंक अ वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड चॉइस बिकॉज what I liked about this organization was teen sectors mein kaam karte the. One was commodities trading, which was like coal, core, iron ore and all that. And second was they had a manufacturing plant which was in Nalagarh, which is close to Chandigarh. तो ये दो जगह पे काम करते थे और दोनों बहुत extreme businesses थे. So जो trading वाला सारा काम होता था वो होता था उड़ीसा में, which is like mining hotbed of India. And the factory was a completely different experience. So factory mein mujhe seekhne ko kafi kuch mila. There was another example where you could learn from your juniors. So there was this guy there, ek Sharma ji hote the wahan pe, jo sari factory ka HR IR wo sab dekhte the. And he was a very seasoned guy. Unse kafi kuch factory kaise chalani hai, factory ke compliances, wahan ke blue collar workforce, wahan ki union, wahan ki negotiation, health and safety, wo sab bahut kuch unse seekha maine. उड़ीसा में अलग अलग जगहों पे गया, वियर्ड जगहों पे गया जहाँ पे हमारे लोग थे, सो आई यूज टू कनेक्ट विद देम एवरी 2-3 months, सो उन वहाँ पे विजिट्स किए, कंडीशंस देखी वहाँ पे हमारे लोगों की, जनरल पॉपुलेशन की, रियलाइज की अच्छा ऐसे भी जगह हैं हमारे देश में जहाँ पे लोग रहते हैं और काम करते हैं। बट दैट इज अगेन अराउंड द टाइम व्हेन द माइनिंग स्कैम ऑल्सो ब्रोक आउट, वो जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस है वो काफी कम हो गया, ऑलमोस्ट बंद ही हो गया, सो मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड्स ही करते थे, हाई सी सेल्स वगैरह, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से कोल मंगा के चाइना भेजना और वो सब। फैक्ट्री वॉज डूइंग प्रिटी वेल, तो फैक्ट्री चलती रही थी। वहां से आई हैड अ स्टेंट विद द BPO, जॉन कील्स BPO. जॉन कील्स इज अ श्रीलंकन कंपनी एंड दे हैड टेकन ओवर ऑक्सीकोजेंट विच वॉज एन इंडियन BPO विच वॉज ऑपरेशनल, सो दे हैड टेकन ओवर दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो जॉन कील्स में BPO बिल्कुल अलग क्राउड, अलग पॉपुलेशन, मतलब नॉट एग्जैक्टली ब्लू कॉलर बट एवरेज एज वॉज अबाउट 23-24 years टाइप का एवरेज एज ग्रुप होता है लोगों का। वहाँ पे लोगों के डिमांड्स बहुत अलग थे, वहाँ पे डिसिप्लिनरी केसेस बिल्कुल अलग तरीके के आते थे।
एंड क्या हेडकाउंट था?
दैट हेडकाउंट वॉज आई थिंक अबाउट सम 1200-1300 पीपल। दैट वॉज अगेन अ वेरी वेरी यूनिक एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के बाद वो एक इकलौती जगह या पहली जगह ऐसे मिली थी जहाँ पे लोगों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंगेजमेंट्स चाहिए होती थी, कि मतलब फन एट वर्क और गेम्स और फ्लोर गेम्स और पिकनिक और खाना और सो नाइट शिफ्ट में लोग आते थे, सो यू यूज टू इंश्योर दैट वी आर देयर टिल द शिफ्ट स्टार्ट्स, बिकॉज बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, दे विल शो अप इन डिफरेंट वेज एंड विच कुड लीड टू डिसिप्लिनरी इश्यूज. कभी किसी की रात को तबीयत खराब हो गई, सो देयर इज अ नर्स, देयर इज अ डॉक्टर अवेलेबल, यू हैव अ टाई अप विद हॉस्पिटल. सो ये सारी नई नई चीजें वहां पे करी जो पहले के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था शायद. एंगेजिंग विद दोस काइंड ऑफ पीपल वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टूगेदर. आई थिंक दैट्स द मोस्ट यूनिक सेट ऑफ एक्सपीरियंस सो फार. क्योंकि उससे पहले के ज्यादा जो एक्सपीरियंसेस थे वो सब ब्लू कॉलर वर्कफोर्स वाले ही थे. Then my manager from John Keel's had moved from John Keel's to this organization called United Health Group, which is an MNC. It's a back office primarily of the United Healthcare in the US. They're based out of Gurgaon. So when she moved on a few months later, she wanted me to come and join. And I was like, मैंने जब United Health Group के बारे में चेक किया तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही awesome organization है. And I just tagged along with her. I was there for about 2 years and a quarter or so. After about the first year, I started realizing ki yaar, matlab, that job was very, very structured. Zyada structure tha us job mein ki aapke ek ek SOPs aapke defined hain. Pehle ek ya sawa saal ke baad, I started feeling yaar, ये तो नहीं हो पाएगा. I still dragged along कि चलो देखते हैं, कुछ तो exciting होगा, कुछ तो life में अच्छा होगा, कुछ तो fun होगा. End of the day, पता लगा कि यार ये तो नहीं कर सकता, मैं इतना खाली तो नहीं बैठ सकता. ठीक है, काम करने की आदत है, अच्छा लगता है, सीखने को वहाँ पे भी मिला. ऑब्वियसली दे वर टीम्स विच वर हैंडलिंग फिलीपींस एंड अदर ज्योग्राफीज एंड यूज्ड टू जस्ट टैग अलोंग विद देम टू अंडरस्टैंड टू लर्न एंड ऑल. सो वो सब चीजें सीखने को मिली विच वॉज अ गुड थिंग. दैट वॉज ऑल्सो अराउंड द टाइम वेन आई हैड स्टार्टेड माई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम विद एक्सएलआरआई. So as part of one of those initial coursework, mera first trimester ka coursework tha, jahan pe we had to do some assignment on a startup, the HR systems within a startup. And one of my course mates there knew somebody from the organization that I currently work at, which is Delhivery. So usne bola ki yaar main janta hu aur wahan pe jaake unke sath hum project kar sakte hain. So that is how we first landed up at Delhivery. I think this was in 2013 beginning or so. So we landed up here and humne jo bhi apna project tha, apne queries thi, questions the, wo sab humne kiye. We interacted with a couple of founders also, understood why they started that business, what are they expecting. And Delhivery was a very small organization. Matlab kuch 250 log the us time, if I recall correctly. So jab humne project khatam kiya to Suraj, who was one of the founders of Delhivery, one of the co-founders of Delhivery, he wrote back saying ki, I hope aapka project sab theek thak ho gaya. If you can share the detailed report, then it will be wonderful. Otherwise, agar aap थोड़ा हमको भी बता सकते हो, सिंस ऑल ऑफ यूर एचआर गाइस, इफ यू कुड टेल अस आपके हिसाब से हमने क्या करना चाहिए आगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट विल हेल्प अस. ऑब्वियसली देयर आर यंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा एक्सपेंसेस थे नहीं शायद करने को, एचआर टीम सेटअप करने को, वो सब. सो आई सेंड देम सम स्टफ सेइंग दिस इज व्हाट वी फील यू शुड डू, दिस इज हाउ वी फील द ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव ऑन, और इस तरह से आपके एचआर में एचआर सिस्टम्स मैच्योर होने चाहिए. सो ऑल दैट इंट्रैक्शन हैपेंड. उसके बाद शायद एक आध बारी और हमने टच बेस किया था, बट आई थिंक बिगनिंग ऑफ 2015, आई थिंक समटाइम अराउंड फेब और मार्च इज व्हेन सूरज रीच्ड बैक अगेन. He wrote back and said, you remember we had done this project and all. And I was actually very happy to hear back from him because I was tracking Delhivery, because we had a project, I was tracking how they are doing and all news, media and all that stuff. So he said, now we are decently funded. We are looking for to hire senior people in the organization. So would you be interested? Fortunately, that was the phase then when I was actually sort of getting over with my stint at United Health Group. So I started exploring, met Suraj, met a couple of other founders, met other senior members from the management team. And it took about a couple of months time, but ultimately things materialized. And July of 2015 is when I landed up at Delhivery. By the end of next month, it will be 5 years of that journey.
So tell me about post-Delhivery chapter.
अगर 5 साल के डिलीवरी की जर्नी के बारे में बात करनी है तो मुझे और 5 साल चाहिए होंगे.
सो टेल मी, डिलीवरी में व्हाट आर द मेजर करियर पाथ्स फॉर पीपल? मतलब जैसे एक कोई लॉजिस्टिक साइड में एक करियर पाथ होगा, एक इंजीनियरिंग साइड में होगा, तो मेजर करियर पाथ्स इफ यू कैन गिव मी अ समरी.
See, so we are primarily a supply chain organization, right? मतलब end-to-end supply chain solutions हैं जो हम लोगों को provide करते हैं, और I think we are doing a pretty decent job at it. Can we become better at it? Obviously, always. But I think we are doing a very decent job than at it, and we are better than a lot of people in the market right now. I'm not saying this only because I'm part of this organization, but otherwise also I genuinely feel that we are much better than a lot of organizations in this space. Operations is obviously the backbone. That is where the majority of the manpower is. That is where majority of the roles are available. I have seen people growing from a biker, a delivery boy, who's a contracted blue-collar, typically worker. This guy grew to a senior manager role within this organization. I do not think a lot of organizations will have these kind of examples to quote. I know of people within the organization who have, not with delivery probably, but prior to delivery were a delivery boy themselves. Then they joined delivery at a certain level and have gone on to become, or they are heading a region, or that kind of growth I've seen. I've seen 28, 29, 30-year people heading one entire business. I mean, younger. There's one guy who was, I think, about 25, 26 years old a couple of years back. And he's heading the entire international business for us. And he's doing a wonderful job at that. I have seen interactions between the founders who are in their mid-30s now and the MD of the organization. So both Sandeep, who heads the sales and BD side of the organization, would be about 45, 44. And Suraju, who is the MD for HR right now and used to be MD for supply chain till very recently, who's just about to complete 60 or might have just completed 60. So I've seen interaction between these kind of age group of people, with Sahil bringing in completely new perspective and vision for the organization, being the founder and the CEO. Suraju bringing in all his might and experience, and Sandeep bringing in the mix of experience and the aggression that is required. I think we are the only organization which experimented with putting jo humne engineers hired kiye the 2015 mein. We had handpicked some after about a year's time of those engineers being with us. We had handpicked about some 26, 27 of them. Un sabko humne ek mahine tak train kiya tha rigorously. Ek saal tak to unhone obviously engineering ke point of view se kaafi sara kaam kiya operations ke saath milke. But humne unko train kiya tha and we seeded them into the operations role. Couple of them have gone on to become directors, senior directors now. And these guys have a total experience of like 5 years. Their total tenure with delivery is equivalent to their total experience in life. Right? So those guys are heading regions or sub-regions and huge parts of our businesses, right? So those are opportunities which the organization has created. There are people who have taken it up. I still remember Batchcom special 26 bol ke bulate the kyunki usme 26 log the. There's not a design, but hand-picked kiye the log aur wo 26 pe aake wo sankhya baith gayi thi.
The hierarchy point of view se kaise jata hai wo? Like, क्या होता है मतलब फर्स्ट यू हैव अ फील्ड एग्जीक्यूटिव फिर उसके ऊपर क्या है उसके ऊपर
सो सप्लाई चेन इफ वी लुक एट दैट फ्रॉम द सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव व्हिच इज अगेन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समबडी कैन स्टार्ट एज अ फील्ड एग्जीक्यूटिव ही इज पार्ट ऑफ द लास्ट माइल ऑर्गेनाइजेशन और समबडी कैन स्टार्ट अप एज अ ग्राउंड कोऑर्डिनेटर इफ दे आर ऑन द वेयरहाउसिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बोथ दीज आर कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स. We do give people opportunities to grow up to a supervisory role, a frontline supervisory role in terms of an executive, senior executive or a center manager, assistant center manager, team leader kind of a role. And once they grow into a manager, a senior manager kind of a role if they are on the warehousing side, or they grow into a cluster manager or a station manager, senior manager, director kind of a role if they are on the last mile side of the organization. But after the managerial role, when it comes to senior manager and director and above, the organization is pretty much the same. Matlab, in terms of the titles, it is pretty much the same. Responsibilities obviously vary depending on which part of the organization you are supporting or leading at that point in time. But it's a very flat organization. Five grades and the organization gets over. So you start from G5, go up to G1, five being the lowest, one being the highest, and that's about it.
Okay. And so the different parts of the business, one you told me is warehousing, the other you told me is last mile. Or kya kya hai, like areas where you have headcount?
So warehousing and last mile put together, they constitute part of express part of our business, which is the B2C e-commerce generally. And that is the core, that is the forte that we have. We've also opened alternate revenue lines in terms of providing fulfillment services to various clients. We do B2B as well now. We have been doing it for over a couple of years now, and we are doing exceedingly well at that.
Fulfillment service kya hua matlab? Just help me understand.
So warehousing typically for us is a processing center or a hub where which are like either you pick up a shipment from a client's place, you bring it to one of our sortation centers, and then sort those a bunch of shipments into the destinations that they are supposed to go to, and then process them forward in the network so that they reach the last one of the last mile centers. For example, you pick up something from Bangalore, from a client warehouse in Bangalore, maybe 100,000 shipments. Wo 100,000 shipments ko aap fir apne network mein leke aate ho, wahan pe usko sort karte ho. Wo sortation center aapko batata hai ki yaar ye 100,000 ya 1 lakh jo shipments aaye the, usme se 50,000 Delhi jaane hai, 20,000 Jaipur jaane hai, 30,000 Bombay jaane hai, aur कुछ 10,000 गुवाहाटी जाने हैं, राइट? उसके बेसिस पे फिर वो हब्स को ट्रांसफर हो जाते हैं. नाउ हब्स डू अ बैग लेवल सॉर्टिंग एंड देन उनके व्हीकल्स अरेंज होते हैं कि कौन से व्हीकल में जाएगा, वो व्हीकल कितने बजे डिपार्ट होगी, उनके हिसाब से उनके सर्विस लेवल्स होते हैं. वो व्हीकल उतने बजे जाती है, गिवन टाइम फ्रेम के अंदर वो लोड होता है. वहां से दैट व्हीकल विल फ्रॉम बैंगलोर इट विल डिपार्ट इधर टू गुवाहाटी और टू से व्हाटएवर दिल्ली मे बी मुंबई एंड ऑल सो ऑन एंड सो फोर्थ. और जहां से ये फर्दर सॉर्टिंग ऐसे ऐसे होती चली जाती है टिल सच टाइम द शिपमेंट्स रीच द लास्ट माइल सेंटर व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द कस्टमर्स डोरस्टेप. एंड वहां से फिर वो जो बाइकर होता है, डिलीवरी बॉय होता है, वो लेके उसको जाता है और आपको या आप तक या मुझ तक वो डिलीवर करता है लाके.
ठीक है, सो दिस इज द B2C पार्ट.
देन देयर इज अ B2B पार्ट ऑफ आवर बिजनेस आल्सो वेयर we pick up shipments in bulk and may not necessarily deliver it to the end consumer. Now take the example of somebody who manufactures garments, for example, or shoes maybe. So I pick up maybe some 50,000 shirts, right, from a warehouse or the manufacturing unit, and I take those shirts, and those shirts are to be delivered to various retailers. Now their retailers could be either their franchisees or their distributors or whosoever, right? So if you're not in contact with the end customer, as is the case in the B2C business, where we do connect with the end customer also. So, वहाँ पे 50,000 boxes उठाए, 50,000 में से कौन से boxes, कितने pieces, कौन किसके पास जाने हैं, कितने बजे पहुँचने हैं. You have to take appointments from these retailers. कि अच्छा, आप अपनी shop कितने बजे खोल रहे हो, आपको आपके पास में कितने बजे लेके आऊँ, कितने shipments हैं, उसके हिसाब से vehicles arrange करना. Doing all of this while keeping a check on the cost that we incur and the timelines that we have promised to the customers. ये दोनों चीजें meet होनी चाहिए. We cannot exceed the cost, we cannot exceed the timelines, obviously. So that is on the B2B part of it. Works pretty much like the B2C only, but couple of key differences is that one, shipments move in bulk or in multiple pieces together, and the second is the contact with the end customer is not there. Then there are fulfillment services that we run. These are nothing but huge warehouses of our own. I think we have a footprint of over 5 million square feet there. I think I'm still understating that, but yeah, that's the last number that I remember. What we do typically in a fulfillment center is that we provide space to people or to clients or merchants so that they can store their inventory with us if they are short on space by themselves. And whenever the orders are placed, they relay those orders to us, and then we pick up those orders, aggregate that, make them ready to ship, and then the choice is with the client whether they want to ship through us or if they want a third party to come and pick those up from our warehouses. So that is how the fulfillment center operates. The movement of goods is not as fast as in a sortation center or a hub, because hub is like a continuous flow of shipments. Fulfillment center is a place where you provide them space to store and you make the inventory visible to the clients as well. कि हमारे पास आपके कौन से SKUs की कितनी inventory है, जिसके basis पे they allocate us orders and then we process those orders and then we move them out into the network. Then we have a FTL business, full truckload business. The market is also something which is very, very organized. So typically, for example, if you have a factory or a warehouse somewhere, right, or aapke kuch hafte mein do ya teen truck chahiye hote hain, basis whatever saman aapko bhejna hai apne customers ko ya clients ko aage. Now you will need trucks for that. Abhi wo market bhi kafi unorganized hai, kyunki aap kisi local vendor ke paas jaoge, wo aapko X road rate quote karega. The USP that we have is that we have tried to aggregate that part of the market also. Hamari teams hai which have aggregated a whole bunch of transporters in various places, jo bhi at least jo key industrial beds hain ya jahan pe aise opportunities available hain, And we make the trucks available to them. We track those vehicles. We ensure the service levels are met. Whatever decent credit period is prevailing in the market, we offer that also, because we do understand that's a very major part of how that market operates. And we do all of that. So we do that part of the business as well, which is the FTL. Then there's the cross-border business that we do.
So this full truckload business would be competing with like BlackBuck. Unka bhi similar hai na, aggregation model hai unka bhi.
Aggregation is one of, you can say that, yes. Then there's the cross-border business that we have, where we get in a lot of shipments from China or maybe other countries in the Gulf, Europe, and all of that. And then we get those clearances done right from customs to everything. We get those shipments into the country and then we put them into our network so that they are delivered to the end customer. So they are also being able to offer people a competitiveness in terms of price as well as service levels, both in terms of cutting down the number of days it takes for those products to get delivered. So I think these are the 5-6 broad business lines or revenue streams that we have. I'm sure iske alawa ek aur bhi honge jo humne shuru kiye kahin na kahin pe, and they are in various stages of maturity.
So most of the operations team members would either be responsible for transportation from point A to point B. It could be B2B or B2C, or at a warehouse or a sorting center, like managing the efficiencies at a warehouse or sorting center, right? But the operations team largely in those type of activities may involved hogi.
Yes.
And what about the corporate teams? So, like you, I'm sure technology team ka bhi kafi bada role hoga. So what technology team ka kya role hai, and what are the other corporate teams?
Of all the corporate teams, I think tech team is something which we are, which is a call out. Because we have, I think, good about 250 plus people as part of our tech team within the organization. And that includes tech, data sciences, product, everything. The USP is that every single of the platforms that we use currently, whether it is Godam, which is a warehouse management system for fulfillment centers, or it is the transport management system, 100% of these have been built in-house. Ye sab hamari khud ki teams ne develop kiya hai right from the scratch, and we keep on making enhancements to them. And there are multiple, so, and the focus is a lot on the technology. The technology part of logistics is something which has generally been ignored in this industry. I don't think there are a lot of organizations which do that. Some who do that, they're still, I think, they've got a long way to catch up. If you look at some of the larger players, MNCs, unke systems, I think, kafi legacy systems hai, unhone banaye to shayad bahut acche the. But because of the size that they have become, it doesn't give them the flexibility to make changes as rapidly as we do. And there are some others which are like sort of new age, and effort hai ki jis bhi cheez ko automate kar sakte hain aur har cheez ko track karna chahiye pehle to baat, aur agar kisi process ko automate karte hain to wo kar dena chahiye. And the idea never is fir humko log kam chahiye honge, because humne Delhi airport ke paas hamara ek sortation center hai jahan pe humne state of the art sortation machine lagayi, and hamare logo ki demand actually wahan pe badh gayi rather than kam ki wajah se. Obviously throughput bhi badh gaya, hamari productivity badh gayi, but log bhi humko zyada chahiye the. So actually we ended up creating more employment by virtue of automating. But utne log hone ke baad bhi the best part of including technology or introducing technology in these processes is efficiency bahut zyada badh jati hai. Productivity aap track kar sakte ho, aur chances of margin of error jo hota hai wo bahut kam ho jata hai. Right, because the manual process mein jitni baar us process ko run karoge, that process is as much prone to committing errors or making or letting you make errors. But agar automate kiya to error ke chances utne kam ho jate hain. So shipments landing, matlab Bombay ki shipment Chennai nahi pahunchti, right? Matlab agar physical sorting ho rahi hai to kisi bande ne utha ke address padh ke usko sort karke alag alag bins mein rakhna hai. टेक्नोलॉजी सेज की, ठीक है आपने एक शिपमेंट स्कैन करी, आपकी एक लाइट ऑन, उस आपके स्कैन के बेसिस पे एक लाइट जलती है और उस लाइट जिस बैग के ऊपर जड़ी आपको उस बैग के अंदर डालना है. सो यू डोंट नीड पीपल विद अ लॉट ऑफ स्किल टू डू दैट. सम बेसिक ट्रेनिंग कि भैया इस तरह से स्कैन करते हैं, इस तरह से उसको बिन में डालते हैं या बैग में डालते हैं, जहाँ की लाइट चलेगी उसमें डाल दिया, इतने शिपमेंट्स हो गए, उसको बैग, उसको पैक कर दो, बैग सील इस तरह से लगाते हैं।
इसलिए आपके ऑपरेशंस को वो इडियट प्रूफ बना रहे हैं इन अ वे।
हाँ एग्जैक्टली, आई मीन दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट? मतलब कस्टमर को आप वैल्यू कैसे डिलीवर करोगे, उसको तो जो एंड कस्टमर है उसको तो अपना प्रोडक्ट चाहिए और टाइम से चाहिए, कॉस्ट तो वो ऑलरेडी मोस्ट लाइकली पे कर ही चुका है, राइट? आई मीन इफ इट्स अ प्रीपेड ऑर्डर तो वो पैसे तो पे कर चुका है, अब उसको अपनी डिलीवरी चाहिए और टाइम से चाहिए। अगर आपने बॉम्बे जाते हुए शिपमेंट को एक मैनुअल इंटरवेंशन या मैनुअल गलती की वजह से चेन्नई भेज दिया, तो जो बॉम्बे में उसको 2 दिन में डिलीवर होने वाला था वो शायद 15 दिन में डिलीवर होगा, विच यू कैन नॉट अफोर्ड।
सो कैन यू कैटेगराइज इस इंडस्ट्री में प्लेयर्स कौन कौन है? जैसे आपने मुझे थोड़ा अभी हिंट दिया कि कुछ एमएनसीज हैं, कुछ स्टार्टअप्स है, तो आप ब्रॉड कैटेगरीज में बता सकते हो कि ये कुछ मेजर कंपनीज इस कैटेगरी में है, कुछ कंपनीज इस कैटेगरी में, एंड डिलीवरी कहाँ स्टैंड करता है इन सब के बीच में, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ सर्विसेज?
B2C में यू हैव ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने हमारे साथ ही हमारे आसपास शुरू किया था, एंड दोज विल बी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एक्सप्रेस बीज, ईकॉम एक्सप्रेस, दीज आर द टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन फ्लिपकार्ट हैज ईकार्ट व्हिच इज अ कैप्टिव यूनिट।
इसमें ये फेडएक्स और DHL नहीं आएंगे क्या B2C में?
B2C में फेडएक्स और DHL है, बट आई थिंक द शेयर ऑफ वॉलेट दैट दे हैव अमंगस्ट वेरियस क्लाइंट्स इज नॉट एज हाई एज other third party players put together. So, but yes, obviously they do exist. They have their own share of business.
तो वो किस कैटेगरी में आएंगी? FedEx, DHL, Blue Dart, DTDC, ये किस कैटेगरी में आती हैं?
DTDC के साथ तो ज़्यादा e-commerce का volume है नहीं मेरे ख्याल किसी भी client का, as far as I recall, and I may be wrong, but so far as I recall, I do not think DTDC has a lot of volume on e-commerce side at least.
तो these are like ट्रेडिशनल कुरियर कंपनीज,
मतलब पेपर कुरियर्स एंड ऑल ऑफ दैट, आपको एनवेलप भेजना है, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, दोज आर द थिंग्स व्हिच वी डू नॉट डू येट। हमने छोटे छोटे पायलट्स एक दो जगह पे शुरू किए हैं टू सी कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे अब जैसे सॉर्टिंग मशीन्स हैं, राइट? वो सॉर्टिंग मशीन एक तरीके से डिफाइंड है और वो पैकेजेस को स्कैन करते हैं। अगर उसके कन्वेयर बेल्ट पे मैंने एक लिफाफा डाल दिया विच इज लाइक अ 3-4 millimeter काइंड ऑफ वेट, या की मोटाई जो 3-4 millimeter होती है, तो हमारे जो सॉर्टिंग मशीन का आम है वो शायद उसके नीचे से निकल जाएगा। तो मुझे वो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा टू बी एबल टू इंश्योर कि वो लिफाफा भी स्कैन होता है। एंड सिंस वी आर ऑलरेडी ग्रोइंग द B2C, B2B एंड अदर बिजनेसेस, तो हमको वो उतना करने की जरूरत नहीं है। बट हमने एक दो जगह पे पायलट करने की कोशिश की है कि क्या हम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल डिसाइड कि वेदर इट इज वर्थ पुटिंग ऑल दैट एफर्ट एंड रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग इनटू स्टार्टिंग अप विद दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब एक हमको एक नॉर्मल कुरियर कंपनी बनना है कि नहीं।
मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एक लेमैन को इंडस्ट्री के प्लेयर समझ आ जाए, तो एक जैसे कैटेगरी हम कह सकते हैं कुरियर कंपनी, मतलब थोड़ा ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कुरियर कंपनीज हैं जैसे, जो आपको या तो कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल से उठा के डिलीवर करते।
हाँ, तो उसमें जैसे आपके पास BTDC है, ओवरनाइट एक्सप्रेस है, ये वो कंपनीज है जो मतलब ट्रेडिशनली जिनको लोग जानते हैं कि हाँ ये लोग कुरियर करते हैं। और आपको अगर आज भी अगर आपको एक कागज कहीं पे भेजना है या एक एनवेलप भेजना है, तो या तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट करोगे या इन दोनों में से किसी को दे के आओगे, क्योंकि आपके घर के आसपास इनका कोई फ्रेंचाइजी ऑफिस खुला होगा, या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा सिक्योर डॉक्यूमेंट है, ज्यादा जल्दी है, तो किसी DHL के ऑफिस में आप दे के आ जाओगे।
एंड ये सब कुछ करते होंगे फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी बिग, सब कुछ ही ये लोग करते होंगे आई अज्यूम।
DHL वुड डू overnight express and DTDC, I do not think they'll do a very huge volume for you.
अच्छा, they are just into documents.
हाँ, they're very happy doing documents. That is what their USP is. A major part of their network works on the franchisee model. So that is how they operate.
ठीक है. And दूसरा category is like जो e-commerce companies के लिए fulfillment करते हैं, जिसमें आपने कहा एक्सप्रेस बीज।
हाँ, तो उसमें अ नॉर्मल कस्टमर कैनॉट गो एंड बुक एन ऑर्डर ऑनलाइन बाय देमसेल्फ्स, राइट? आई मीन इन टर्म्स ऑफ कि मुझे कुछ भेजना है तो मैं सीधा एज अ कस्टमर में नहीं ऑर्डर कर सकता, बट हाँ मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जबोंग, वूनिक, जहाँ पे भी जो भी ऑर्डर किया वो विल गेट डिलीवर्ड टू मी थ्रू वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें से कि ऑब्वियसली डिलीवरी इज वन,
And then you have Express, then you have Ecom Express, you have Vulcan, which was part of Snapdeal earlier. So these are organizations. There's Ecart, which is a captive arm of Flipkart. Then there's Amazon Transportation Services, which is again captive of Amazon. So these are organizations which e-commerce ke shipments deliver, where the customer ka direct contact hota hai. So a customer would know a e-commerce company. If a customer has to deliver, differentiate between an e-commerce logistics company versus a normal courier company, then those are the organizations that you need to look for. So somebody like a delivery, DHL Bluedot also, Ecom, Express Bees, these are the organizations, or yeah, Ecart hai, ATS hai. These can be categorized as e-commerce focused organizations, and a normal overnight express, Blue Dart and others can be categorized as a normal courier company as we have known them traditionally.
ठीक है, और अगर मैं manufacturer हूँ और मुझे अपना माल transport करना है, या तो raw material या finish, तो वो category क्या होगी which looks at this?
So उसके लिए then you will have to go to either the LTL part of or the FTL part of business that we do, क्योंकि आपका finished product है वो आपने अगर export करना है तो JNPT या नवा सेवा या कांडला किसी port पे पहुँचाना है, for example that could be one of the options, या फिर किसी दूसरे शहर में आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास पहुंचाना है.
Right. And इसमें FTL में कौन है मेजर कंपनीज?
FTL में मेजर कंपनीज आई थिंक ब्लैकबक वुड बी देयर, एंड डिलीवरी का जो FTL वाला पार्ट है दैट इज देयर. वी मूव फ्यू हंड्रेड ट्रक्स एवरी डे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स. उसके अलावा रिविगो ऑल्सो डज दैट. उड़ान इज देयर, बट देन उड़ान इज अगेन मर्चेंट फोकस्ड. सो मतलब उड़ान ऑन डिमांड आपको नहीं सप्लाई करता ट्रक्स. अगर आप उसके रेगुलर क्लाइंट हो तो वट एवर इज द अंडरस्टैंडिंग दैट दे विल हेल्प यू डू, बट दे आर मोर ऑफ एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडर. सो दैट्स द डिफरेंशिएटर बिटवीन एन उड़ान एंड अ डिलीवरी और अ ब्लैक बक काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट कम्स टू FTL services.
तो ये तो सारे स्टार्टअप्स है ना, इसमें तो ट्रेडिशनल प्लेयर्स भी होंगे ना, लाइक जो ट्रांसपोर्टर कैटेगरी जो होती है.
You can look at somebody like a Gati, which also has a share into e-commerce and B2B. But Gati is one organization which can, which does part of this. But otherwise, the rest of the organization is pretty much unorganized.
And B2B as a category अलग से है या B2B सब लोग ही करते हैं? मतलब
B2B as a category, if you're looking for prominent players, then Gati does that. Rivigo has B2B as a category. And nobody else has that kind of a presence. I mean, in parts, a lot of people would have started doing that, I'm sure. But apart from these two, nobody else that has that kind of a presence in B2B. Ki matlab ek din mein 1,000 ton ka load kar diya. And
so in terms of numbers, where does delivery stand as compared to, say, Rivigo or, you know, Ecom Express or Express Bees? Matlab, what is the relative size of the different players?
Overall services pe dekhenge, I mean, that's a very unfair comparison, in fact. I mean, unfair to delivery also and unfair to those organizations also, because what we do is hum company to ek hai, but ye alag alag hamare business units hai, and hence by themselves those business units may not be as huge as say for example Rivigo, right? But as an organization we could be x size of Rivigo or y size of somebody else, right? So in terms of the agar categorize karke dekho to B2C space mein we are the clear market leaders, especially I mean given this current COVID situations also. Jab puri industry band thi, the entire logistics setup was like absolutely shut down due to the lockdown and everything, we were operational, we were delivering essential services at a decent scale, and we were back to our BAU volume, in fact higher than the BAU volumes, pre-lockdown volumes, much before everybody else. So be it Rivigo, be it Ecom Express or anybody else that you name right now, I mean as we speak, they are yet to get back to their BAU volumes or the pre-lockdown volumes. We are already beyond those volumes now. So that way, I mean, we have ensured that the network has been up and running. We have been doing the right things. We have built up capacity. Manpower humne hire karke rakhi, retain karke rakhi kafi sari, while everybody else was letting go of manpower to save costs and everything. So वो सब हमने करके रखा, because we knew कि हम pull up तो कर लेंगे वापस, और जब ये खुलेगा तो बहुत सारा demand आएगा. सो वी वर काइंड ऑफ गियरिंग अप फॉर दैट डिमांड. सो जो भी हमने सैलरीज पे करते रहे या जो भी लोगों को रिटेन करके रखा, दैट वाज मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर लाइक से अबाउट व्हिच विल कम गुड इन अबाउट अ मंथ्स टाइम एंड व्हिच started happening now. So us hisab se dekhenge to as on date I think nobody else is anywhere closer to the volumes that we do. In the B2B space I think Gati might probably still be larger than us because that's the major part of their volume. FTL mein Blackwork jo karta hai wo karta hai. I think that is one option which I can look at. I mean outside of delivery. But if as a customer or as a manufacturer, if I'll have to go to anybody, then I'll either go to them or delivery. And my third option will be a local transport.
Rivigo also is into FTL.
Rivigo also is into FTL, but they are yet to restart, at least to any decent scale. They are trying to. I'm sure they'll be back on it. So if the same question comes up 2 months or maybe a quarter later, the answer could be okay. Slightly different.
So, for people looking to get into logistics, like, are there specialized courses which teaches them logistics operations?
We were struggling with this issue for a long, long time. Matlab, agar hum apne ghar mein aas-paas dekhein, apne doston mein dekhein, the community, larger community also, nobody aspires to grow up and become a logistics manager or a warehouse manager. People do aspire to become an IAS, IPS, doctor, engineer, army, police, whatever. But nobody still aspires to go ahead and become a warehouse manager or a last mile manager or stuff like that, right? So these are the roles that we still need to take to the people. What we did was that last time our teams ran a detailed campus program where we visited right from some of the top campuses to the lower rung also, or the tier BC kind of campuses also. And we spoke about these things a lot. We ended up hiring about 120 odd people.
Like engineering campus or MBA?
We went to engineering college as well and MBA colleges as well. And there's a tech drive that we do every year. So that was also there. So in total, I think we hired about some 160, 170 people who have started joining right now. So from now to another 2 months or so, these guys will continue to join. So, वहाँ पे हमने काफी सारी बात करी. What we realized was that a lot of colleges or a lot of institutions have dedicated programs around supply chain management or logistics management or operations management. But if you see, a lot of these programs are tilted towards, say, general transportation. मतलब वो marine वरीन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं. हाई सी सेल्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट, इंडेंटिंग, वो सब के बारे में ज्यादा बात करते हैं. एंड व्हाट वी रियलाइज्ड वाज दैट व्हाइल दिस गिव्स स्टूडेंट्स अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंस विद इन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, देयर इज नथिंग इन द मार्केट व्हिच इज फोकस्ड ऑन ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, राइट? ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स इज लाइक स्लाइटली मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ, इट्स अ स्लाइटली मोर नीश स्पेस within logistics, in fact, right? Logistics as an industry hi koi ghusna nahi chahta generally unless unke paas koi choice na ho. That's how traditionally it has been viewed, right? And this is changing for good now, but abhi tak to yahi status hai. So what we did was we do a lot of work with the NSDC and couple of other government departments. So late last year, early this year, one big achievement that we got was that we thought ki yaar jab koi padhata nahi hai ye sab cheeze, obviously wo talent pool aayega kahan se, right? From the frontline supervisory staff to managerial staff and all that. Managerial, senior managerial staff to chalo aap koi badhiya campus pe jaoge, acche padhe likhe analytical problem solver type josh type log bacche leke aa jaoge, wo kar lenge. But jo mujhe frontline supervisor chahiye, kisi ko ye samjhana ki bhai tumne engineering kari hai ya BBA kiya hai, ab tumko baith ke ek center pe 1200 shipment roz scan karni hai aur uska jawab dena hai. That is a slightly difficult task. So, हमने NSDC के साथ काम किया and NSDC and the Logistics Sector Skill Council actually partnered, all three of us partnered. And what we got out of the entire discussion and deliberation was a full-time undergraduate program, a 3-year graduate program in e-commerce logistics. Now, ऐसा कोई program market में है नहीं अभी. And NSDC and the Logistics Sector Skill Council, they helped us take the entire concept right up to the UGC. They helped us get all the approvals and everything. सो आई थिंक स्टार्टिंग दिस सेशन अभी जुलाई अगस्त में जो भी वो सेशन शुरू होगा आई थिंक थोड़ा डिलेड है सेशन अभी बट वेन एवर दैट सेशन स्टार्ट्स देयर आर अ बंच ऑफ कॉलेजेस टियर थ्री प्लस टाइप कॉलेजेस विच विल बी टीचिंग विच विल बी लॉन्चिंग दिस थ्री ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम तो अप्रूव हो गया हमने कोर्स आउटलाइन बनाया था वो दे दिया गवर्नमेंट को पसंद आया एनएसडीसी को पसंद आया हमारे लिए तो बहुत रिलेवेंट था वो क्योंकि हमने ही बनाया था ई-कॉमर्स को सोच के बनाया था द मोमेंट इट गॉट अप्रूव्ड हमारा नेक्स्ट चैलेंज वाज कि यार इसके लिए कंटेंट तो है नहीं मार्केट में मतलब ई-कॉमर्स के ऊपर किसी ने बुक्स तो लिखी नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या एंड देन वी टुक इट ऑन आवरसेल्व्स कि चलो ठीक है हमारा बेनिफिट तो हो ही रहा है बिकॉज दीज गाइज विल पास आउट वी कैन प्लेस देम इमीडिएट टर्म नहीं बट एटलीस्ट मिड टू लॉन्ग टर्म में तो मुझे सोल्यूशन मिल रहा है इस प्रॉब्लम का इस मैन पावर सप्लाई का एंड देन देयर इज अ लार्जर बेनिफिट फॉर द लार्जर इकोसिस्टम ऑल्सो मतलब जब लोग पास आउट होंगे तो सिर्फ डिलीवरी में थोड़ी काम करेंगे वो अलग अलग बाकी जगहों पे भी काम कर सकते हैं सो वी आर नाउ वर्किंग विद द लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डेवलप द कंटेंट फॉर द थ्री ईयर प्रोग्राम सो दैट इज समथिंग अगेन दैट वी आर ओनली डूइंग वी हैव द नो हाउ वी हैव नो ई कॉमर्स में क्या चाहिए कैसे चाहिए मोटा मोटा सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह की प्रोसेस चलते हैं टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग हो सकती है बट The general processes are the same, right? The flow of goods is the same. So, उसके basis पे हमने modules बनाने शुरू कर दिए. So, those are the modules which will be taught in those colleges. We've also committed to them that, you know, we'll send our senior leaders once in a while to various colleges so that they can go conduct some classes, give guest lectures and all, give people live examples. We are more than happy to welcome these guys into our warehouses as part of their curriculum and see what happens there. हमने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया जहाँ पे कि जो लॉजिस्टिक्स वाले अप्रेंटिसेस होते हैं वो लोग आके वेयरहाउसेस में 6 महीने काम करके देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ की जो उन्होंने पढ़ा था और जो काम होता है उसमें हाउ डू दे कोरिलेट बिटवीन द टू सो या आई मीन बैक टू योर क्वेश्चन इफ देयर आर रेडी प्रोग्राम इन द मार्केट ऑन सप्लाई चेन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट यस स्पेसिफिक टू ई कॉमर्स ऑब्वियसली नो विल देयर बी अ प्रोग्राम वेरी शॉर्टली
Okay, that's good to know. So, ek startup mein, and specifically like logistics tech startup mein, what is the kind of soft skills or attitude that you think will make people successful?
Sare organizations ke liye ek answer to hona bahut mushkil hai, but I'll still give it a try. Ek to aapko apne aap ko roles ke liye open rakhna padega. You cannot be hellbent and you cannot go by the JD or the books that have been given to you ki bas ye likha hai to yahi karna hai right logistics as a industry agar aap dekho to abhi bhi unorganized hai this part of logistics industry at least right on the marine side and everything else it's pretty much sorted because wahan pe kafi sare compliance or governance already hai place mein But on our side of logistics, it's still kind of unorganized. So while there are frameworks, guidelines given to you, so log wo chahiye jo alag alag level pe, jo bhi unko problems aati ho, usko that problem solving ability has to be there, right? Or that inclination has to be there. Ki yaar, mujhe na end of the day, mera end objective hai ki ye parcel customer tak pahunchna hai, theek hai? अभी कस्टमर को मैंने 2 बार फोन कर लिया उसने फोन नहीं उठाया एन इजी वे आउट इज टू कम बैक टू द सेंटर एंड से कि यार इसको फोन किया था इसने उठाया नहीं एंड दैट ऑर्डर मैं अब ट्राई नहीं कर रहा इसको वापस भेज दो शिपमेंट को एक वो ऑप्शन हो सकता है दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने एक बार फोन किया 2 बार फोन किया उसको मैसेज ड्रॉप कर दिया और शाम को जब आप उस रूट से वापस आ रहे हो तो आपने एक बार फिर से फोन किया एंड देन किसी ने कुछ ऑर्डर किया है तो शाम को आके आप ये नहीं बोल रहे कि यार इसको वापस भेज दो आप शाम को आके ये बोल रहे हो कि इसको कल फिर से ट्राई करेंगे या एक बार सेंटर पे आके फिर से ट्राई किया आई मीन गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल डू यू आर यू फोकस्ड ऑन गेटिंग द जॉब डन आई मीन प्रॉब्लम्स आएंगी कस्टमर हमेशा फोन नहीं उठाएगा राइट हो सकता है वो बिजी हो सकता है वो ट्रैवल कर रहा हो सकता है उस आपका नंबर सेव नहीं और उसने फोन नहीं उठाया देयर आर पीपल लाइक दैट ऑल्सो राइट देन हाउ डू यू डिलीवर दैट शिपमेंट उसने कुछ ऑर्डर किया था वो तो चाहिए आज मेरे पास 10 लोग आने थे और 10 में से 8 लोग आए तो मैं बाकी 2 लोगों के जो 100 शिपमेंट्स पड़े हैं उनका क्या करूं मतलब फिगर आउट अ सॉल्यूशन कि वो शिपमेंट्स भी तो निकालने हैं यू कैन नॉट कम बैक एंड से कि आज 2 बंदे काम थे तो मैंने ये 100 शिपमेंट को हाथ पे नहीं लगाया वो नहीं कर सकते व्हेन इनिशियल डेज में जब मैंने घूमना शुरू किया था और सेंटर्स को विजिट करना शुरू किया था स्पेशली लास्ट माइल सेंटर्स को आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड लुकिंग एट पीपल सेइंग कि मतलब सेंटर सेटअप करने में तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने नया सेंटर अप एंड रनिंग कर दिया, बिकॉज आपको एक लैंडलॉर्ड ने जब साइन अप करके चाबी आपको दे दिया, उसके बाद आपको एक टेबल कुर्सी लगानी है और थोड़ा सा स्पेस रैक वैक वो सब करना है, विच इज अनदर 24 आवर्स जॉब. बट टू गेट अ ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट काइंड ऑफ अ थिंग दैट टेक्स स्लाइटली लॉन्गर. सो डू यू वेट फॉर दोस 4-5 डेज? ऑब्वियसली सर्टेनली नॉट. तो आप तब तक काम कैसे करोगे, आपके पास लैपटॉप है, एसेट है, सब कुछ है. तो लोगों ने अपने मोबाइल हॉटस्पॉट यूज करके एक एक हफ्ता काम किया है, ऐसी भी चीजें मैंने देखी है. राइट, नॉर्मली समबडी कैन कम बैक एंड से कि यार ये तो मोबाइल हॉटस्पॉट है, ये तो मेरा डेटा है, मैं क्यों यूज करूँ. बट दैट इज द काइंड ऑफ ओनरशिप दैट दे हैव. सो वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट पीपल नीड टू हैव, एंड सेकंड इज द ओनरशिप, एंड दैट ओनरशिप इज एब्सोल्यूट.
आप ये जज कैसे करते हो इंटरव्यू में कि इस बंदे के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओनरशिप है या नहीं है?
Yeah, so beyond a certain level, at the ground level, obviously there are certain traits that are different to a bunch of traits that you look at. Thoda aptitude check karte hain uska ground level pe hum. Not ground level means not the biker kind of a population, but the supervisory, the frontline supervisory staff. Us level pe hum uska aptitude dekhte hain ki matlab wo thoda bahut kuch aata vata hai, ganit vanit theek thaak hai, thodi bahut angrezi samajh boojh leta hai. बिकॉज आप देश के किसी भी कोने में हो, कोई से भी भाषा बोलते हो, आपका शिपमेंट का जो एड्रेस है वो अंग्रेजी में ही लिख के आता है. वो जो बाइकर भी होता है वो भी अगर आप तमिलनाडु में भी हो एंड इफ यू डू नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, आपको बोर्ड पे क्या लिखा है वो भी नहीं पढ़ने में आ रहा, लेकिन जो एड्रेस लिखा है शिपमेंट पे वो तो पढ़ना आना चाहिए, सो दैट आप किसी से पूछ सकते हो कम से कम. सो दैट वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, बिकॉज दैट्स हाउ द एंटायर नेटवर्क वर्क्स, दैट इज वन. फिर हम उनका जो फ्रंटलाइन सुपरवाइजरी स्टाफ होता है उनका हम एप्टीट्यूड चेक करते हैं कि मतलब उसको बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी है कि नहीं उसकी. एंड दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, नथिंग, कुछ बहुत हाई फाई कैट वैट टाइप का टेस्ट नहीं होता है इनका ऑब्वियसली, क्योंकि वैसे लोग तो चाहिए नहीं उस लेवल पे. तो वो हम चेक करते हैं एंड देन उसके ऊपर है कि वो काम उनको कितना आता है. एंड देन व्हेन दीज गाइज आर इंटरव्यूड यू गिव देम वेरियस सिचुएशंस कि अगर तुमने काम किया है तो ये सिचुएशंस आई होंगी तुम्हारे लाइफ में और तुमने कैसे सॉल्व किया उसको. कपल ऑफ थिंग्स, वन द रिस्पॉन्सेज दैट द पर्सन गिव्स एंड सेकंड हाउ दोज रिस्पॉन्सेज आर गिवन. यू कैन ड्रॉ आउट द पैशन फ्रॉम द एंटायर कॉन्वर्सेशन कि अगर उसने सच में पैशनेटली वो रिस्पॉन्स दिया है, इफ द गाय इज अ स्टोरी टेलर तो आपको पूरी कहानी बताएगा कि हाँ ये हुआ था, फिर मैंने ऐसे किया, फिर ऐसा किया, यहाँ पे अटक गया, उससे हेल्प ली, फिर ये कर दिया और मेरा काम हो गया. Right, so you look for those kind of traits. Ki the person gives you very bland responses or the person is actually a storyteller. I mean, not in the sense ki movie ki script suna raha hai 2 ghante baith ke, but somebody who can give you that entire story in like say half a minute or a minute's time. And that lets you, that gives you a lot of inputs on the and insights on the person.
But isse ownership level kaise pata laga? Matlab, because he is going into detail, so you can guess ke isne ownership li hogi, tabhi isko detail mein mujhe bata rahi hai.
There are no tools to measure that yet, but from the conversations, the ownership would only show if the person is totally result focused. Ki aapne 40 steps to le liye beech mein, uske baad ant mein hua kya? आपने एफर्ट तो सारा मार लिया, मेहनत सारी कर ली. वो एक कहानी है ना कि मतलब एक बार जंगल में सब जानवरों ने मिलके एक बंदर को राजा बना दिया और सबने बोला कि आज से शेर राजा नहीं होगा, ये बंदर ही राजा होगा. तो बंदर एक दिन पेड़ पे बैठा था और नीचे से कुछ वो खरगोश आए, तो एक खरगोश ने बोला कि राजा साहब मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को शेर पकड़ के ले गया. तो बंदर ऐसे पूरे पेड़ पे उछल कूद शुरू कर दी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर हर डाल पे कूदा. एंड द खरगोश बोले कि आप राजा हो, आप ये क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे को बचाओ. क्या देख तेरा बच्चा बचे ना बचे, मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ. तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि अगर खरगोश का बच्चा गुम हो गया तो उसको पकड़ के लेके आओ और उसको बचाओ. सो वो रिजल्ट फोकस है कि नहीं है. मतलब ओनरशिप वहां से आती है, ओनरशिप चार डालियों पे कूदने से नहीं आती है. वो चार डालियों पे कूदना इज द स्टोरी टेलिंग पार्ट ऑफ इट.
ओके, एंड आपके लिए सबसे इफेक्टिव हायरिंग चैनल क्या रहता है?
पीपल बीइंग रेफर्ड बाय समबडी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक बाय फार, बिकॉज़ दीस आर द गाइस, एनी ऑफ माय एम्प्लॉइज वुड एनी डे नो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स एंड ही विल बी एबल टू रिलेट और रिले टू हिज फ्रेंड सेइंग कि भाई देख तू यहां पे काम तो करना चाहता है बट यहां पे ये चीजें होती हैं,
या यहाँ पे ऐसे काम करते हैं या इतना काम करना पड़ता है, इस क्वालिटी का काम चाहिए होता है, एंड दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क, दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज. सो आई थिंक उससे बढ़िया मैच तो हो ही नहीं सकता.
सो दैट वाज प्रणय टॉकिंग अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज इन द लॉजिस्टिक टेक स्टार्टअप स्पेस. चेक आउट unnati.net फॉर ऑल द लेटेस्ट स्टार्टअप जॉब्स एंड फॉलो अक्षदत्त ऑन लिंक्डइन फॉर मोर हेल्पफुल करियर एडवाइस. Beyond Campus is brought to you by Unnati and is a production of thepodium.in. If you like this show, then we are sure you will love our other shows on subjects like entrepreneurship, marketing, books, and drama. Check out thepodium.in for a complete list of all our shows.